Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Sonu Sood.
धन्यवाद सरबजीत. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन. सुषमा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
थैंक यू सोनू.
और अब हेडलाइंस के साथ है सरबजीत कौर.
Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with US President Donald Trump in Washington, D.C. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduces new income tax bill in Lok Sabha. And benchmark domestic indices end nearly flat. Sensex slips 32 points. Nifty closes at 23,031.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉशिंगटन डीसी में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया. और प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के हुए बंद. सेंसेक्स 32 अंकों की गिरावट में रहा. निफ्टी 23,031 पर हुआ बंद.
Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President Trump in both the restricted and delegation-level formats. Mr. Modi is also scheduled to interact with senior U.S. administration figures, business leaders and members of the Indian community. Prime Minister Modi arrived in Washington, D.C. in the wee hours today on a two-day visit to the United States of America. In a social media post after landing, Mr. Modi said he is looking forward to meet U.S. President Donald Trump and building upon the India-USA Comprehensive Global Strategic Partnership. Sushma ji, all eyes on this much-awaited meeting. Your expert comment on this meeting and its impact on the Indian economy.
Well, certainly you are absolutely right. All eyes are on this meeting. Everybody is waiting. And we have to remember that Prime Minister Modi is one of the first global leaders to be meeting President Trump. A few others, of course, have met him, but probably he's the fourth or fifth, leader. And by itself shows the increasing closeness of bilateral relations between India and the U.S. As everyone has been aware, we have been talking a lot about tariffs and trade in the last few days. President Trump has talked about reciprocal tariffs. But this is something that I think that has been worked upon by the Indian government. You know, so many reports have come that we are in any case, even in the budget, we have brought down our tariffs on certain key areas which are of interest to the U.S. And where we are also not going to lose much revenue. So it's a win-win situation for both sides. And I think that the negotiations or the talks that will take place will probably be fairly amicable, given the fact that both sides are kind of prepared for a give and take on this issue. That is, of course, on trade. But, you know, people haven't talked much about other areas. Another very, very big area of collaboration between India and the U.S. is energy. Now, first of all, we are already importing a great deal of oil from the United States. It's probably the fifth largest supplier to India. But that is probably likely to increase because with sanctions on Russian imports, not precisely on oil imports, but on the vessels that are carrying crude, there are problems in transportation. So increasingly, India is looking for other avenues. And we are, of course, already, we have diversified our sources of supply in the Middle East also. But number one is we're probably likely to step up our oil imports. Second is our imports of liquefied natural gas, which are already rising very rapidly from the US. And this is an area, a clean fuel, which, you know, we are looking to expand. Thirdly, of course, is the area of nuclear energy. India is looking at small and medium nuclear reactors. That's an area of great interest. And now that the sanctions that the US had imposed on India as far as nuclear energy is, were concerned, is, you know, virtually been lifted. So this is an area because India wants to increase its area of energy, moving away from fossil fuels. Then thirdly, of course, we have the area of defense purchases.
Right.
That's a very large area. Strategic ties between India and the US are expanding. We have already done a lot of purchases from the US in recent times. And you must recall that in the past, our major purchases of defense used to be from the erstwhile Soviet Union and now Russia. But that was a time when the West was actually not prepared to supply, you know, defense equipment to us. Now, Western countries, whether it is the US, Germany, France, everyone is very keen to sell their wares. And India is all too eager to upgrade its military hardware. And therefore, this is another area. We, as I said, we've already done purchases. And the last, of course, is, again, a very key area that is high tech. India and the US have already entered into certain initiatives in the area of high-tech electronic components, semiconductors. So just now, I believe an American company has announced an investment of 10,000 crores in the semiconductor area, which, by the way, is not, seems large, but for semiconductors is considered a very average kind of investment. So these are very, very large areas. So it's not just tariffs that they are going to be discussing. They're going to be discussing a whole host of areas. And these are areas, again, where you are likely to have investments also from the U.S. coming in. If we have some kind of limited trade deal, India is looking at some kind of an investment deal like they have entered into the European Trade Association, European Free Trade Association, EFTA, where, you know, $100 billion of investment has been committed. So India is looking at that kind of investment, which would create jobs. And so it's a reciprocal, mutual win-win situation.
So हमने देखा है कि भारत और यूएस के रिलेशंस जब पिछला ट्रंप का टर्म था उसमें भी बहुत स्मूथ थे. हालांकि ये टैरिफ्स का जो एल्यूमिनियम पे स्टील पे वो एक मुद्दा जरूर उठा था. अभी आपको क्या लगता है जिस तरह का जैसे आपने कहा बजट में जो कंसेशंस दिए गए हैं और आगे चलकर भी जो कंसेशंस देने की बात हो रही है आपको लगता है कि गिव एंड टेक से एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें हम लूजर्स नहीं होंगे?
देखिए ये सोच इस वक्त ये है कि हम एक लिमिटेड ट्रेड डील की तरफ चलें यूएस के साथ. यूएस ने जापान के साथ भी एक लिमिटेड ट्रेड डील का फैसला किया है. तो वैसे ही हम सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर हमारी कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं और उन सेक्टर्स के ऊपर हम एक लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादातर काफ़ी सारी कॉम्प्रहेंसिव होती है. तो ये कॉम्प्रहेंसिव नहीं होगी, ये लिमिटेड होगी. और जो सेक्टर्स जिसमें यूएस को इंटरेस्ट है और जिसमें इंडिया को इंटरेस्ट है, दोनों तरफी म्यूचुअल इंटरेस्ट, उसमें ही टैरिफ्स शायद वहाँ कम होंगे. इंडिया की तरफ टैरिफ कम होंगे और अगर यूएस बढ़ाता है तो यूएस को भी ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि उनको भी एक्सेस चाहिए हमारी भारतीय हिंदुस्तानी मार्केट में. तो मेरे ख्याल में जो बातें थोड़ी अग्रेसिव तरीके से अभी कही जा रही हैं यूएस की तरफ से, शायद इतना नहीं होगा जब नेगोशिएशंस चल पड़े.
और एक और मुद्दा है चाबहार पोर्ट का. पिछली जो टर्म थी उसमें उन्होंने सैंक्शंस में वेवर दे दिया था. चाबहार पोर्ट का ईरान से सीधा सीधा ताल्लुक है और भारत के लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन का. आपको लगता है कि इस बार भी शायद कोई ऐसा यू नो मिडिल रोड पे एक समझौता हो पाएगा?
होना तो चाहिए. है क्योंकि शबाहर पोर्ट सिर्फ ईरान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आप अफगानिस्तान जा सकते हैं. अफगानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो अफगानिस्तान के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन का जो काम है इंडिया की तरफ से जो हो रहा है उसका एक जरिया है. तो इसी वजह से सैंक्शंस में वेवर किया जा रहा था और उम्मीद तो यही है कि शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी यही वेवर देगी क्योंकि उनको ईरान की तरफ, ईरान की सैंक्शंस की तरफ नहीं देखना चाहिए इस वक्त, उनको अफगानिस्तान की जो ज़रूरतें हैं उनकी तरफ देखना चाहिए.
जी, और अब लेते हैं अगली खबर. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विधेयक के संदर्भ में कहा कि नए प्रस्तावित कानून में मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में धाराओं और अध्यायों की संख्या कम की गई है और इसे सरल बनाया गया है ताकि आम नागरिक आसानी से समझ सके. सुश्री सीतारमण ने सुझाव दिया कि विधेयक को अतिरिक्त जांच के लिए संसद की प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए और तदनुसार समिति को अगले सत्र के पहले दिन इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए. राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किसी भी क्षेत्र के आवंटन में कटौती नहीं की है. उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के अलावा विकास को गति देना है. मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा दावा किए गए प्रभावी पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए बाजार में अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए बजट में अल्पकालिक उधार में भारी कमी की गई है. उन्होंने कहा कि बजट संभावित उद्यमियों को विशेष रूप से गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है ताकि बैंक ऋण पर मार्जिन मनी और सब्सिडी प्रदान करके रोजगार पैदा किया जा सके. महंगाई के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कल जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 में सीपीआई सूचकांक 5.22% से गिरकर 4.31% पर आ गया है. उन्होंने कहा कि सूचकांक अब आरबीआई के कम मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब है. उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कीमतों का बोझ लोगों पर ना पड़े. तो क्या कहेंगी सुषमा जी, जो नया इनकम टैक्स बिल टेबल किया गया है आज लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, इसमें बताया गया है कि ये बहुत सरल होगा, लोग इसको आसानी से अब समझ पाएंगे, सारे जो चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनको कम किया गया है और इसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया गया है, इसकी लैंग्वेज को ज़्यादा आसान बनाया गया है, ईजी टू अंडरस्टैंड. सो आपको लगता है कि इससे जो लिटिगेशन बहुत होती थी उसमें कमी आएगी और क्या वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस बढ़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं?
बिल्कुल सोनू, मेरे ख्याल में इसका सरल होना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो आम इनकम टैक्स पेयर है अब वो समझ सकता है कि इनकम टैक्स की जो बारीकियां हैं वो उन इनकम टैक्स बिल को पढ़ के अपने आप समझ सकेगा. भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. और दूसरी बात ये है, जो आपने लिटिगेशन की बात की, मेरे ख्याल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे बड़ा लिटिगेटर है इस वक्त. तो ये जो है, ये जो लिटिगेशन कम करने की जो एम है सरकार की, वो मेरे ख्याल इससे होगा क्योंकि जो जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, लिटिगेशन इस वजह से होता है कि भाई एम्बिग्यूटीज़ हैं कि आप कहते हैं कि हमको इतना टैक्स देना है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कहते हैं आपको इससे ज़्यादा देना है, और ये वो दोनों उसी लॉ को साइट करते हैं. लेकिन अगर जो लॉ है वो बिल्कुल सरल हो जाए तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भाई मतलब ये लॉ यही कह रहा है, तो आपको लिटिगेशन की ज़रूरत नहीं है, बट इस पर काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी.
सुषमा जी, एंड द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट the budget aims to accelerate growth besides encouraging private investment. Your expert comment on this very briefly.
Well, the budget is done. Of course, number one, they have, as usual, they have allocated a very substantial amount of for capital expenditure in the infrastructure sector.
Correct.
Now, there has been some criticism that this percentage of increase is not has been as high in the past. But for the last 4 or 5 years, there has been a tremendous rise in capital expenditure. And when you have reached a certain high base, it's very difficult to go much higher than that. So the actual volumes of allocation for capital expenditure are very high. Secondly, the thing that, of course, is not precisely mentioned here, that they have gone in for the expectation of consumption-led growth. Now, the decision to raise the income tax exemption ceiling for the middle class from 7 to 12 lakhs is meant to stimulate consumption and improve demand in the economy. So that is expected. If you improve demand in the economy, you do expect that this will stimulate investment in the private sector, which would seek to meet that demand. So this is the, because we have been seeing that the government has actually been doing all the heavy lifting till now as far as investments are concerned, public sector investments. The private sector has been a little chary. So with the focus on raising demand, it is expected that the private sector will get the incentives to make the kind of sizable investments that are needed.
और उन्होंने मेंशन किया मुद्रास्फीति के बारे में जो ताज़ा आंकड़े आए हैं कल शाम को उन्होंने मेंशन किया कि जनवरी 2025 में जो सीपीआई इंडेक्स है वो गिरकर 4.31% हो गया है इससे पिछले महीने 5.22% था जो आरबीआई के लक्ष्य के काफ़ी करीब है और एट द सेम टाइम हमने कल देखा कि आईआईपी फिगर्स में थोड़ी सी नरमी थी सो इन सब फिगर्स को देखते हुए आपको लगता है कि जो आरबीआई का फैसला था 5 सालों के बाद 4.5% रेट कट करने का ब्याज दरों में ये एक बहुत ही टाइमली फैसला था
हाँ बिल्कुल ही जस्टिफाइड है अगर आप देखें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इंतजार यही था कि भाई एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये मुद्रास्फीति का दर जो है कम होगा लेकिन डेटा आया नहीं था अब डेटा आ गया है कि 4.3% और आप जैसे कह रहे हैं 4-6% वो एक रेंज है टॉलरेंस बैंड जो रिजर्व बैंक कहता है जिसमें वो चाहता है कि इन्फ्लेशन उसी के अंदर रहे तो ये लोअर एंड के ऊपर आ गया है और एक बहुत बड़ा वजह है बहुत बड़ी वजह ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है और फूड इन्फ्लेशन मेरे ख्याल में सबको इंतज़ार था कि ये होगा क्योंकि वो सीजनल राइज था फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस वगैरह का और ये अब नीचे आ गया है और उसका बहुत ज़्यादा बहुत काफ़ी असर है वो पूरे इन्फ्लेशन के बास्केट में
सुषमा जी आप कह रही हैं कि जैसे सीजनल होते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स के प्राइसेस तो सीजनली फ्लक्चुएट होते हैं लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन वो भी 3.7% पे आई है सो लगातार 4% के नीचे बनी हुई है कुछ समय से ये भी एक बहुत राहत का विषय है कि जो आरबीआई का इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स हैं और साथ में फिस्कल मेजर्स भी हैं जो जैसा कि उन्होंने कहा आज वित्त मंत्री ने कि सरकार पूरा पूरा ध्यान लगाएगी सुनिश्चित करेगी कि जो प्राइसेस हैं वो बर्डन ना करें लोगों को तो आपको लगता है कि दोनों के जो मिला जुला एक प्रयास है वो एंश्योर कर रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो अंकुश में रहें
हाँ बिल्कुल जैसे मैंने कहा फूड इन्फ्लेशन एक तरफ रख लीजिए और दूसरी तरफ वो जो नॉन फूड इन्फ्लेशन की जो आइटम्स हैं और खासकर आप देखें तो फ्यूल आइटम्स फ्यूल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार ने काबू किया है कि भाई इनके जो दाम हैं वो ना बढ़ें हालाँकि इस वक्त हमें थोड़ा सा फ़ायदा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गई हैं तो इतना असर ऑयल कंपनीज के ऊपर इतना भार इस वक्त नहीं है लेकिन पहले भी जब प्राइसेस बढ़ी हुई थी तब भी दाम बड़ी बीच बीच में ही एक दो बार बढ़ाए गए हैं, लेकिन नॉट टू दे डिड नॉट मैच इंटरनेशनल रेट्स. तो अब जो इंटरनेशनल लेवल्स लो हैं, तो इस वक्त ऑयल कंपनीज थोड़ी सी उनको भी राहत मिली हुई है, और ये जो कंट्रोल है एनर्जी प्राइसेस का, उसका भी बहुत बड़ा असर है इन्फ्लेशन के ऊपर.
आइए अब रुख करते हैं शेयर बाजारों का. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक दिन में आई तेजी को गवाते हुए बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 32 अंक कम होकर 76,139 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14 अंकों की मामूली गिरावट से 23,031 पर दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था. बीएसई मिड कैप सूचकांक बहुत ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड नियरली फ्लैट, गिविंग अप गेन्स सिक्योर्ड इन इंट्राडे ट्रेड. द 30 शेयर इंडेक्स एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स फेल 32 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,139. सिमिलरली द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 क्लोज्ड मार्जिनली डाउन बाय 14 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,031. द ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस एट बीएसई डिस्प्लेड mixed trend. The mid-cap index ended nearly flat with a positive bias, while the small-cap index dropped over 0.4%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Sun Pharma advanced over 3.1%, Tata Steel as well as Bajaj Financial Services both rose over 2.9% each, and Bajaj Finance gained over 2.2%. Conversely, in the top laggards, Adani Ports shed over 1.7%, Infosys slipped 1.1%, and TCS fell over 1%. In sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended down. In top laggards, Focused IT lost almost 1%, Information Technology slipped over 0.9%, and FMCG fell over 0.6%. Conversely, among top gainers, Metal rose over 1.2%, Reality added over 0.7%, and Healthcare gained 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,089 companies declined and 1,858 advanced, while 127 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 12 companies hit their 52-week high, while 193 hit their 52-week low. Sushma ji, you know, so many words. Low, mm-hmm. flat, mm-hmm. and decline, and laggard. Mm-hmm. What do you, attribute to this dampened sentiment? What could be the primary reason?
Well, this has been going on for the last few days.
That's right.
And today, in fact, has been slightly better, probably because of the domestic inflation data that is coming in. I think for the last actually 3 months, we've seen largely bearish trends in the stock markets. And this is largely due to the geopolitical events, and also the fact that, of course, geopolitical events, including the events that are happening in the Israel-Hamas war, in the Ukraine war, and the advent of a new U.S. president. So all these things have had their impact, and the worries over the fact that the world may be entering into a global trade war. So these are external factors over which it's very difficult to have any control, but the market is obviously nervous. There is today, as I pointed out, the market has not fallen as much as it had for the last 5 or 6 days. That it was relatively flat, and that is because we had some good domestic news coming in, the inflation data that we just talked about. But there is continues to be nervousness over what is going to happen in the US, the meeting between Prime Minister Modi and President Trump. So there's a nervousness in the market right now.
सुषमा जी, एक रस्साकशी चल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs और जो भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या DIIs हैं उनके बीच. यहाँ के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो संभालते हैं मार्केट को, खरीदते हैं, लेकिन FIIs बेच के जाते हैं. नेट यूजुअली उनकी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ हफ्तों से कि उनकी नेट सेलिंग होती है. सो क्या लगता है आपको, ये सिचुएशन क्या अभी जब तक ये अनसर्टेंटी रहेगी बनी रहेगी, एफ FIIs, आपको क्या लगता है कब वापस लौटेंगे भारतीय बाजार में, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका तो फेथ बना हुआ है।
हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का तो बिल्कुल फेथ है इंडिया स्टोरी में और वो लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको वैल्यूएशंस देखनी है, उनको रिटर्न्स देखने हैं, तो वो ज़्यादा जो कहते हैं हार्ड हेडेड हैं, तो उनको रिटर्न्स इस वक्त यूएस मार्केट में ज़्यादा मिल रही हैं और वहीं जा रहे हैं, डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जब ये एक दो महीने और जब जो स्थिति अमेरिका में थोड़ी सी संभल जाए कि जो नए प्रेसिडेंट की जो नीतियां हैं सब लोग देखेंगे कि क्या किस तरफ जा रहा है,
मोर क्लैरिटी।
इस वक्त स्पेकुलेशन है कि वो ट्रंप यह करेगा या वो करेगा, एक दो महीने के बाद थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो किस तरफ अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं किस तरफ जाएंगी। और मेरे ख्याल ये एक जो मुलाकात जो आज हो रही है मोदी और ट्रंप के बीच, वो एक हमें एक डायरेक्शन देगा और हमें नहीं कि सारी ग्लोब वर्ल्ड ओवर लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर।
जी बिल्कुल। और करेंसी बाजार की ओर रुख करते हैं, जो भी आपने फैक्टर्स कहे उससे अफेक्ट होता है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट से 86.90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.63 पर था। और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.3% से अधिक का उछाल आया। जापान के निकेई सूचकांक में 1.2% से अधिक की तेजी दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.21% बढ़कर बंद हुआ। इस बीच चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई और हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% के नुकसान में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1.8% के उछाल पर था। फ्रांस के कैक में 1.5% से अधिक की बढ़त थी, लेकिन लंदन का फुटसी 0.5% से अधिक के नुकसान पर था।
US stocks ended mostly lower yesterday after a more than expected US inflation reading added to worries that the Federal Reserve would not cut interest rates anytime soon. The Dow Jones Industrial Average fell 0.5%, S&P 500 slipped 0.27%, while Nasdaq Composite closed nearly unchanged. Earlier, Labor Department's Bureau of Labor Statistics report showed that the Consumer Price Index jumped 0.5% in January 2025 to 3.0% over the last year, up from 2.9% in December. Food prices gained 0.4% after increasing 0.3% in December. Sushma ji, for the benefit of our listeners, very briefly, we'd like to have your expert comment on the current picture of the US market.
Well, the US market is has been very bullish till lately. But now, because of the inflation reading that, as you mentioned, there is some nervousness that if inflation continues to go up, Federal Reserve, may not continue to cut interest rates, which was expected. So that is the worry right now.
Oil prices fell today as a potential peace deal between Russia and Ukraine exerted downward pressure along with rising crude inventories in the US. The commercial crude oil inventories increased by 4.1 million barrels to 427.9 million barrels in the week ending 7 January, according to data released by the Energy Information Administration. Brent crude was trading over 1.1% down at $74.34 per barrel, and WTI crude lost over 1.2% to trade at around $70.48 per barrel when reports last came in.
उधर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.57% बढ़कर 86,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.28% बढ़कर 96,080 रुपये प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति वाला सोना 0.49% बढ़कर 85,904 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी 0.08% बढ़कर 95,582 रुपए प्रति किलो पर थी। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, आप आई और आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी।
थैंक यू सोनू।
And yes, listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with US President Donald Trump in Washington, D.C. tonight. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduces new income tax bill in Lok Sabha. And benchmark domestic indices end nearly flat. Sensex slips 32 points. Nifty closes at 23,031. And that's it in today's edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.